अभी हमको मिलावा दिखता है, इसलिए हम इसकी कीमत नहीं समझते हैं। लाख रुपया खर्च करके भी एक क्षण का समय अधिक नहीं मिल सकेगा, इसलिए हम लोगों को तोल तोल कर समय बिताना चाहिए। आपके पास जो कुछ संपत्ति है वो सारी संपत्ति अर्पण कर दे तो भी मनुष्य जीवन का एक क्षण मिलने वाला नहीं है। एक दिन का जीवन अधिक मिलता हो तो भी सर्वस्व अर्पण कर सकते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। आज मृत्यु है, सर्वस्व अर्पण से एक दिन मिल गया तो फिर सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। मृत्यु टलती नहीं है, जीवन का समय अमूल्य है। कितना ही मूल्य दे दें ये समय नहीं मिलेगा। कंजूस आदमी रुपयों को बहुत सोच सोच करके खर्च करता है तो उस कंजूस आदमी से हमको एक कंजूसी सीखनी चाहिए कि हम समय को बहुत सोच समझ करके खर्च करें। 10 वर्ष कोशिश करने पर भी भगवान नहीं मिले किंतु कुछ समय अच्छा बीत जाए तो 5 मिनट में भगवान मिल सकते हैं। इसलिए सच्चे सुख के लिए समय बिताना चाहिए। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शी भी। असत वस्तु का तो अस्तित्व है ही नहीं और सत वस्तु का अभाव नहीं। जो क्षण क्षण में नाश होने वाला है उसमें क्यों समय बिताओ? संसार के सुख है, स्त्री है, पुत्र है, धन है, इन सब में घुण लगा हुआ है, मृत्यु का घुण। ये देखना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया लकड़ी है, दिखने में अच्छी चमकती है पर उसमें घुण लगा हुआ होता है तो वो कोई काम की नहीं। ऐसे ही संसार के सभी सुखों में काल का घुण लगा हुआ है, इनमें सुख मिलने की हमारी भूल है, मिलेगा नहीं। आत्मबुद्धि प्रसादजम सुख सात्विक है, उस सुख का फल असली है। सात्विक सुख भी राजस तामस सुख से बहुत ऊंचा है, परंतु सबसे बढ़िया आनंद तो भगवान के भजन की भजन प्राप्ति का सुख है। ध्यान जनित सुख सात्विक है। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष, अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त करता है। आसक्ति रहित पुरुष होता है वो अपने अंदर भगवान के ध्यान का एक आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। उसको ये आनंद का अनुभव कैसे होता वो ही जाने। वह पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद का अनुभव करता है। एक बार इस आनंद में आप लग जाओगे फिर आपके लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं छूटेगा। केवल इस बात के विश्वास की कमी है और कोई कमी नहीं। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अपनी आत्मा में ध्यान जनित सुख का अनुभव करता है। संसार से वैराग्य होने पर ये वृत्तियां संसार से उपरामता को ले जाती हैं। संसार से वैराग्य हो जाने के बाद आत्मा परमात्मा के ध्यान जनित सुख का अनुभव करता है। फिर आत्मा और परमात्मा ये सब भेद मिट जाते हैं, एक अक्षय आनंद ही आनंद रहता है। विषयों से वैराग्य में और वैराग्य से परमात्मा के सुख में, परमात्मा के ध्यान में सुख बहुत अधिक है। विषयों का जो भोग है उससे ज्यादा वैराग्य में आनंद और वैराग्य से ज्यादा परमात्मा के ध्यान में आनंद और ध्यान से ज्यादा परमात्मा की प्राप्ति में आनंद, ये आनंद की श्रेणियां हैं। इसलिए परमात्मा के ध्यान में समय बिताना चाहिए। जब मनुष्य परमात्मा के ध्यान में मस्त हो जाता है उस समय उसके भीतर शांति और आनंद की सीमा नहीं रहती। उस ध्यान का एक बहुत ही विचित्र नशा रहता है। उस नशे के अंदर उसको त्रिलोकी का ऐश्वर्य भी दे दो तो भी धूल के समान समझता है, इत्र पेशाब की तरह मानता है, संसार के भोग आराम मेले की तरह लगते हैं। ये वैराग्य की पहचान है। ये कसौटी लगा लगा कर देखना चाहिए कि हमको संसार के भोग कैसे लगते हैं। ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ध्यान असली चीज है। यह सोचना चाहिए कि आयु भर परिश्रम करके धन इकट्ठा कर लिया और आज ही मरना है तो हमें उस धन से क्या लाभ। ये बात तो अपने सोचने से पार पड़ेगी, हमारे कहने से या सोचने से नहीं होगा, आपको खुद को सोचना होगा। पूरी आयु में आपने धन इकट्ठा कर लिया और अभी मरना है तो खूब गहराई से सोचो ये धन आपके क्या काम आएगा। तो हम इसी में ही रच पच कर समय क्यों नष्ट करें। और दूसरी बात यह है शरीर की, खा पी करके शरीर में खूब मांस बढ़ा लिया, खूब मोटे हो गए, आखिर में जब इसकी राख होनी है तो इतना मोटा होकर मांस बढ़ाने से क्या फायदा। मर जाने पर लोग स्मशान में ले जाएंगे तो उठाने वाले बाहर मरेंगे, तंग हो जाएंगे, लकड़े भी ज्यादा लगेंगे, जलने में समय भी बहुत लगेगा। शरीर की तो राख होगी, तो राख होने से पहले पहले इस शरीर से विशेष लाभ क्यों नहीं ले ले में? परोपकार, सेवा, भगवान की भक्ति, भजन, साधन, इसी के लिए तो शरीर मिला है और इसी से ही हमने मुंह मोड़ लिया, तो फिर हमको ये सच्चा सुख कैसे मिलेगा। इसलिए इस शरीर को अच्छे काम में लगाओ, भगवान की भक्ति में लगाओ, जिसके फल स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होकर अखंड आनंद और शांति मिल जाए। तथा लाखों करोड़ों भावी जन्मों के दुख समूह से छुटकारा मिल जाए। खास बात है, आगे कायदा कितना जन्म होने वाला है सब खत्म हो जाए एकदम। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमांगता। अनन्य भाव से जो नित्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं उस महापुरुष को मैं सुलभता से प्राप्त होता हूं। सबसे बड़ी संसिद्धि परमात्मा की प्राप्ति है। इस सिद्धि को महात्मा लोग प्राप्त करते हैं। दुखालय से दुख के आलय रूप पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। इसलिए लाख करोड़ कामों को छोड़कर मनुष्य को ये काम करना चाहिए। ध्यान रहे कि ये मन बड़ा धोखाबाज है, आलसी है। ये परमात्मा का भजन ध्यान का बहाना करके आलसी बना देता है। इसके आलस्य के फंदे में कभी मत पड़ना। भगवान का भजन करने बैठे नींद आ गई सो गए, ऐसे नहीं। जो सोने में समय बिताना है ये धोखा है, और ये धोखा आप अपने को दे रहे हैं, और इस धोखे का परिणाम आपको अगले जन्मों में मिलेगा। अभी इस धोखे का परिणाम नहीं मिलता, अगले जन्मों में मिलेगा। इसलिए सोने की अपेक्षा भजन ध्यान करा, मैं तो मान गए, मैं तुम्हारा भजन करा, काम भी छोड़ दिए और भजन तो यो नहीं सो गया। तो भजन छोड़ करके सोने में समय बिताते हो उसकी अपेक्षा तो घर गृहस्थ का काम धंधा करो। हम तो कहते हैं सोने की अपेक्षा यदि आप रुपए पैसे में भी समय लगाते हो तो सोने की अपेक्षा तो अच्छा है। निद्रा है, आलस्य तमोगुण की चीजें हैं। धन कमाना रजोगुण है, तो तमोगुण से रजोगुण कुछ ठीक ही होता है। इसलिए निद्रा आलस्य में समय नहीं बिताना चाहिए। वास्तव में सोना तो खोना है, तमोगुण की अपेक्षा तो रुपए कमाने में समय खोना फिर भी ठीक मानते हैं। हम जानते हैं कि रुपया हमारे काम नहीं आएगा, हमारे मरने के बाद दूसरों के काम आएगा, पर बताया ना कि तामसी से राजसी श्रेष्ठ है और रजोगुण से श्रेष्ठ क्या है, लोकोपकार सेवा करने वाला, दूसरों को सुख पहुंचाने वाला, ये अच्छा है, ये सात्विक है। सात्विक से भी अधिक सात्विक है परमात्मा के ध्यान में समय बिताना। भजन ध्यान में आलस्य आवे, मन धोखा दे, तो उससे तो अच्छा वह जो रुपए कमाने में समय बिताए। ऐसे धोखे में कभी न आए। भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव तत्व रहस्य श्रद्धा प्रेम लीला इनकी बातों में समय बिताए कितनी बढ़िया बात है। इनके फलस्वरूप भगवान में विशेष प्रेम और ध्यान होता है। सब साधन का फल है परमात्मा का ध्यान, और ध्यान का फल है परमात्मा की प्राप्ति। ध्यान को परमात्मा की प्राप्ति के समान या बढ़कर आदर देवे। परमात्मा की प्राप्ति चाहे न हो पर उसका ध्यान सदा बना रहना चाहिए। यदि एक बार आपका ध्यान लग गया तो आपकी ताकत नहीं है, आप उसे छोड़ देंगे। परमात्मा के स्वरूप में तैल धारावत अपनी वृत्तियों का समावेश करना ध्यान है। तैल धारा माने तेल की जो धारा होती है वो टूटती नहीं है, पानी की धारा तो टूट जाए। जो धारा में फूंक लगाएंगे ना तो पानी की धारा टूट जाएगी, तेल की धार नहीं टूटती, चिकनी और भारी होती है। तो परमात्मा में तेल धारावत अपनी वृत्तियों को लगाए। आप जो ध्यान करते हैं वो तो एक स्मरण है, भगवान की यादगिरी है। ये ध्यान से पहला कदम है, ध्यान तो इसके बाद बाकी रह जाता है। ध्यान की विधि बताता हूं। ध्यान के लिए पहले भगवान का आह्वान करना चाहिए, मैं आपके इस रूप का ध्यान करके उसी में मग्न रहना चाहता हूं, ऐसे भगवान का ध्यान करो। आकाश में स्वरूप को बांधे, यू आकाश में देखे और ये स्वरूप ऐसा उसमें एक जगह नेत्र को टिका दे, मन को टिका दे और फिर उसको स्थिर करे, उसका नाम धारणा है। ऐसे आंख खोल करके चरणों में कि मुखारविंद पर जहां भी ध्यान करें एकदम ध्यान करें। जब भगवान का भजन ध्यान ठीक होगा तो आपकी दशा बदल जाएगी। अंदर की दशा बदलेगी, आपका मुखमंडल और का और हो जाएगा। मुखमंडल किसी भी स्वरूप का ध्यान करें तो वो आपका इष्ट होना चाहिए। इष्ट का ध्यान करने से विशेष लाभ होता है। सभी चीजों के दो स्वरूप होते हैं, निराकार और साकार, स्थूल या सूक्ष्म। जैसे ये वस्तु है इसके दो रूप है, ये तो स्थूल है लेकिन प्लास्टिक की बहुत छोटी 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 गोलियां सी होती हैं, ये उन गोलियों को इकट्ठा करके प्लास्टिक बनाते हैं, फिर उससे इन ढांचों में डाल लेते हैं, इतनी सी होती है, उनसे भी कच्चा माल होता है। तो जो पदार्थ हमको दिखते हैं इनके दो रूप होते हैं, एक साकार रूप एक निराकार रूप। जैसे फूल है ये पृथ्वी का साकार रूप है और जो गंध है वो निराकार रूप है। फूल में जो गंध होती है, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आदि में पृथ्वी निराकार थी, आकाश निराकार है, उसमें जल भी निराकार है, फिर वो निराकार ही जल साकार बादल का रूप धारण करता है। परमाणु रूप निराकार जल बादल बनकर आए तो साकार बन जाता है, फिर परमाणु रूप बनता है तो निराकार बन जाता है। ऐसे ही देहधारी प्राणी सब निराकार हैं, फिर आगे निराकार बन जाएंगे, केवल बीच में साकार दिखते मात्र हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी इस शरीर से पहले प्रकट नहीं थे और इस शरीर के मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में प्रकट हुए हैं, फिर ऐसी स्थिति में परिदेवना क्या है, शोक क्यों करना, ये तो हो गई। शरीर विनाश के लिए भगवान कहते हैं अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यहरागमे। ये संपूर्ण दृश्य है, ब्रह्मा के दिन में अव्यक्त से व्यक्त होता है और रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में ये सब ब्रह्मा के सूक्ष्म स्वरूप में लीन हो जाएंगे। भगवान निराकार स्वरूप से साकार में और साकार से निराकार में आ जाते हैं। जैसे अग्नि निराकार है, वह संघर्षण से साकार बन जाती है, उसी प्रकार परमात्मा निराकार से साकार बन जाते हैं। निराकार रूप से अग्नि सब जगह व्यापक है, यहां भी अग्नि है, क्या जड़े तो नहीं, ये निराकार है, हम लोग देखते हैं जले तब अग्नि हो, नहीं जले तब अग्नि नहीं है। यहां यदि दिया सड़ाई लगाएंगे तो यहां अग्नि अग्नि है, तभी तो वो दिया सड़ाई से अग्नि प्रकट हुई। निराकार रूप से अग्नि सब जगह है, ऐसे निराकार रूप से परमात्मा सब जगह है। अग्नि बुझ गई, स्वरूप बदल गया, परंतु वो वहां कायम है निराकार रूप से। ऐसे ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, फिर निराकार रूप में समा जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। परमात्मा समान रूप से मौजूद है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं, ध्यान से प्रकट होते हैं। ध्यान और प्रेम दोनों ही न हो तो भगवान अपनी इच्छा से कृपा से भी प्रकट हो जाते हैं। नाम लेने पर भगवान प्रकट हो सकते हैं, नाम के भगवान अधीन है, परंतु हम तो सीधी सीधी बात बताते हैं, परमात्मा निराकार रूप से समान रूप से परिपूर्ण है, फिर वहां भाव के कारण से ही तो नहीं प्रकट हो रहे हैं। भाव बनाओ, उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु आप साक्षात प्रकट होकर दर्शन दे तो बड़ी कृपा होगी, वे दे देते हैं। और फिर भी भगवान यदि मदद नहीं दे तो नहीं सही, पर ध्यान तो अपने अधिकार की बात है। सूरदास जी ने कहा कि बाएं छुड़ाए जा तो निबल जान के मोय, हृदय ते जब जाओगे पुरुष बदौंगो तोय। पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि निराकार रूप से भगवान सब जगह है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। वही सगुण साकार प्रकट होते हैं। ये जो आप शांति में बैठते हैं ये क्या है? ये परमात्मा का स्वरूप है। हमारे चित्त में जो प्रसन्नता है वो क्या है? वो ये परमात्मा का स्वरूप है। कभी कभी ध्यान में, प्रेम में, नाम में आपको रोमांच होता है, आनंद की लहरें उठती हैं, तो ये क्या है? ये परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे समय में परमात्मा का विशेष आह्वान करें तो भगवान प्रकट हो सकते हैं। कैसे आह्वान करें? बड़े मस्त होकर अकेले में एक भाव से, एक तार से नारायण नारायण का नाम पुकारे तो भगवान आ जाता है। वास्तव में राम कृष्ण नारायण सब एक है। राम कृष्ण विष्णु ये तीनों युगों में प्रकट हुए थे। मैं गृहस्थी हूं और मैं गृहस्थी से सन्यासी के कपड़े बदलूं तो मेरे में क्या फर्क होगा? लोग यही कहेंगे कि ये वो जयदयाल है जो पहले गृहस्थ का कपड़ा पहनता था, अब ये सन्यासी का कपड़ा पहनता है, तो मेरे में क्या फर्क हुआ? ऐसे ही एक परमात्मा तीन रूप वाले हो गए। भगवान को पुकारे तो एक रामायण की चौपाई हमको याद आई। भरत जी की तरह भगवान को पुकारो, भगवान से कहो, हे भगवान एक बात में पूछूं तो ही, कारण कवन बिसारे मोही। इस तरह भगवान को पुकारो, मोरे मन प्रभु मोरे जीव भरोस दृढ़ सोई, मिलिए ही राम सगुन शुभ होई। मेरा दृढ़ विश्वास है भगवान मिलेंगे। सोई माने वो भगवान हो। कौन भगवान? जिनमें दयालुता है, कृपालुता है, और जिनके अंदर एक बिरद है कि मैं भक्त से मिले बिना रह नहीं सकता, वो भगवान। मोरे जी भरोसे दृढ़ सोई, मिलिए ही राम सगुण शुभ होई। भगवान का बिरद क्या है? जन अवगुण प्रभु मानन काऊ दीन बांधु अति मृदुल सुभाऊ। अरे भगवान कितने कोमल स्वभाव वाले हैं, वो अपने भक्त के अवगुण देखते ही नहीं है। माँ है पिता है, वो हमको हमारी गलती पर डांटते हैं, डांटना भी चाहिए, पर वो हम गलती करते ही चले जाएंगे तो अंत में माता पिता भी हमारा त्याग कर देंगे, चलो भगो यहां से। पर भगवान ऐसे नहीं है। जन अवगुण प्रभु मानन का हो, जो करनी समझे प्रभु मोरी तो नई निस्तार कल्प सतकोरी। 100 करोड़ जन्मों मेरा उद्धार नहीं होगा। बीते अवधि रहे जो प्राणा अधम कवन जग मोही समाना। हे भगवान, आप अपने दासों की दासों के दोषों की तरफ देखते ही नहीं हो, अब आप क्यों अटके हुए हो बताओ। आप यही तो कहोगे कि भरत तुम्हारे ये पाप है, तुम्हारे ये पाप देखने का तो आपका स्वभाव ही नहीं है, अब क्या बात है। ऐसी बात पर तो हम भगवान की जबान बंद कर सकते हैं कि आपका स्वभाव ही नहीं है हमारी गलतियों को देखने का, फिर क्या बात है। अभी भी आप नहीं मिलेंगे तो महाराज अब मेरे प्राण भी नहीं रहेंगे। प्राण रह गए तो समझना चाहिए कि मेरे अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, ऐसा भरत जी सोच रहे हैं। भरत जी ने ये नहीं कहा है कि आप नहीं आए तो मैं मेरे प्राण त्याग दूंगा, ये नहीं कहा है, प्राण रहेंगे नहीं। अपनी दशा बताई है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, ये नहीं कहा कि मेरे प्राण को मैं समाप्त कर दूंगा, ऐसा नहीं कहा है। भगवान को बुलाने का भाव है, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, ऐसे करके पुकारो। द्रौपदी ने पुकार लगाई, विचार करो क्या द्रौपदी के अंदर क्रोध नहीं था, क्या द्रौपदी के अंदर अहंकार नहीं था, क्या द्रौपदी में राज्य का लोभ नहीं था, क्या द्रौपदी के अंदर कोई कामना नहीं थी। लेकिन ये सब गौण, और मेरे नाथ मेरे प्रभु मेरी ये दशा आप कैसे देख रहे हैं। इस अपनेपन के कारण से भगवान सब कुछ भुला करके द्रौपदी का चीर बढ़ाने आए। भगवान से कहो, महाराज हम तो ध्यानावस्था में आपके आने की बात चाहते हैं, हम पात्र नहीं है, हम ध्यानावस्था में आपको चाहते हैं, बताओ। अब यहां महाराज आप अपनी तरफ से विचार करके आओ, हम तो यही चाहते हैं कि हमें आपका निरंतर ध्यान बना रहे। हे वासुदेव हे गोविंद हे राम, ऐसी पुकार बनी रहनी चाहिए। कितनी बढ़िया बात, नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जान जन दीना। सुतीक्ष्ण जी महाराज कहते हैं, नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जान जन दीना। भगवान आकाश में आ गए, स्वरूप बड़ा चमकीला, प्रभु का स्वरूप प्रकाश का पुंज, भगवान राम के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं, युवावस्था का रूप है। जनकपुर के बगीचे में जिस प्रकार से भगवान पधारे थे, उस रूप का सुतीक्ष्ण जी ने विशेषता से ध्यान किया था, वो रूप युवावस्था का किशोर अवस्था का रूप था। किशोर अवस्था में जो भगवान का रूप विशेष रूप से चमकता है, पहले भगवान की स्मृति होती है, फिर स्वरूप की धारणा होती है, धारणा के बाद फिर ध्यान से सुनिएगा, धारणा के बाद भगवान का स्वरूप अंदर बैठने लगता है। ऐसे ध्यान में मस्त होकर अपने सच्चे आनंद को प्राप्त करना चाहिए।